नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल होगा भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेब शिखर सम्मेलन में कहा, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए छपरा के रेडियो मयूर और भागलपुर के रेडियो एक्टिव को किया गया पुरस्कृत। और पटना का पीएमसीएच विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1100 से अधिक बेड वाले परिसर का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल रंगारंग और भव्य शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में इस भव्य आयोजन का शुभारंभ करेंगे। 4 मई से शुरू होकर यह खेल 15 मई तक आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में आकर्षक लेजर शो के साथ कलाकार, स्कूली बच्चे और खिलाड़ी मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। आयोजक के रूप में बिहार अपने विरासत, इतिहास और ज्ञान परंपरा को उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविन्द्रन शंकरन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह उद्घाटन समारोह ओलंपिक खेलों के शुभारंभ की तरह भव्य होगा
और इसमें करीब 8,500 बच्चे लोग आ रहे हैं, पूरा देश भर का लोग। करीब 27 मेडल गेम है और एक डेमो स्पोर्ट है और ये 6 वेन्यू पर हो रही है। शाम 6 बजे उद्घाटन है इसका, भव्य तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कोशिश ये है कि इसका इनॉग्रल सेरेमनी ओलंपिक में जैसे होता वैसे अट पार करने का कोशिश है, देखते हैं हम कितना कामयाब होते हैं।
उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी दर्शकों को देखने को मिल जाएगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
कल से ही खेलों की स्पर्धाएं भी शुरू हो जाएंगी। प्रथम दिन वॉलीबॉल, जूडो, कबड्डी, मलखम और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होंगी। वॉलीबॉल और जूडो की स्पर्धाएं पटना में आयोजित होंगी, जबकि कबड्डी के लिए राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर को चुना गया है। पारंपरिक देसी खेलों के तौर पर मलखम के खिलाड़ी IIM बोधगया परिसर में बने मंच पर एक दूसरे को चुनौती पेश करेंगे। वहीं तीरंदाजी के लिए विशेष तौर पर भागलपुर को मेजबानी दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए बिहार ने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है और एक बेहतर बुनियादी खेल ढांचा विकसित किया गया है। बिहार के 5 शहरों को इन खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। पटना के साथ साथ राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर और गया में ये खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नई दिल्ली में साइकिलिंग, निशानेबाजी और एथलेटिक्स की कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 28 प्रकार के खेलों में अलग अलग प्रांत के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें पहली बार ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। 709 स्वर्ण पदक सहित 2400 से अधिक पदक इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दांव पर होंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने की ताकत रखता है। वेब्स शिखर सम्मेलन के तहत मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान अच्छी व्यापारिक वार्ताएं हुई हैं। सरकार इस पहल को और आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है।
भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। इंडिया कैन टेक दी global leadership in the world of media and entertainment. That is the kind of talent we have. 1 billion+ talent and 5,000 years old civilization. Billions of stories to tell. So the steps that we have taken here are the first steps and now we need to build upon it. And I am very happy that practically every senior executive who has met in the last 2 days, they have all shown appreciation for this step.
वेब्स के मंच पर मुंबई में आज सामुदायिक रेडियो के संचालकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पुरस्कार भी प्रदान किए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने 12 सामुदायिक रेडियो के संचालकों को यह पुरस्कार प्रदान किए। बिहार के सारण जिले के अभिषेक अरुण को उनके सामुदायिक रेडियो के थीमेटिक श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उनके कार्यक्रम टेक सखी के लिए दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अभिषेक ने कहा कि महिलाओं को वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध से बचाने के लिए उनका यह कार्यक्रम प्रसारित होता है।
महीनों पहले 10वें सामुदायिक रेडियो का राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई थी सरकार द्वारा, जिसमें जिसका पुरस्कार आज के दिन मुंबई में वेव का जो इवेंट हो रहा है सरकार द्वारा, जिसमें कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट का जो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, जिसकी में कम्युनिटी रेडियो को सेलिब्रेट करने के लिए हमें इसमें पुरस्कार दिया गया है। और जो हमारा कैटेगरी था उसमें थीमेटिक कैटेगरी में हमें प्रथम पुरस्कार दिया गया, जो कि पहले भी इसकी घोषणा हुई थी। जो प्रोग्राम था वो उसका नाम टेक सखी था, जो कि महिलाओं को सोशल मीडिया फ्रॉड के अगेंस्ट में हम लोगों ने उन्हें अवेयर करने का एक मुहिम चलाई थी, उसी में हमें वो पुरस्कार दिया गया है।
स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने की श्रेणी में भागलपुर के सामुदायिक रेडियो को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। लोकहित संगठन भागलपुर द्वारा संचालित रेडियो एक्टिव को अंग प्रदेश की मंजूषा कला को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियों को जुलाई महीने तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक और विभागीय प्रमुख सचिवों के साथ बैठक में कहा कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की व्यवस्था करें। चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम की जांच का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को सब्जी उत्पादन करने को उनका विभाग प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक समिति का गठन किया जा रहा है। वे भागलपुर में सहकारिता विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
प्रखंड सब्जी उत्पाद सहयोग समिति जाकर तो बनने की प्रक्रिया जारी है, लगभग 80% बन चुका जाकर, और वहाँ पर लगभग 495 नियुक्त हम करने जा रहे हैं। हर पैक्सों में एक प्रबंधक हमारा होगा जाकर, और एक प्रबंधक के साथ साथ वहाँ सुपरवाइजर होगा, अकाउंटेंट होगा, और उसमें परामर्शी होंगे, MD जो मार्केटिंग करने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में राज्य के जो यहाँ पर किसान है, धान गेहूं के साथ साथ सब्जी का भी अच्छा मूल्य मिल सके, सब्जी की बर्बादी न हो, इस सरकार का प्रयास।
पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। सरकार अस्पताल को 5000 से अधिक बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित कर रही है। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1100 से अधिक बेड वाले परिसर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नई इमारत में अलग अलग विभागों के लिए OPD और इंडोर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसी कड़ी में 65 ICU बेड शुरू किए गए हैं। PMCH को विकसित करने का काम 3 चरणों में पूरा किया जाना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से जाति जनगणना कराने के निर्णय के बाद इनमें और तेजी आई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना की तय सीमा में संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा की सीटों के आगामी परिसीमन के दौरान पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने इस पत्र के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेता ने सही चिंता जताई है।
जो जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है, इसके लिए अर्श सम्मान, ये समेकित प्रयास बहुजन आबादी का है, उन सरोकारों का है, उसकी जीत है, और इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी है कि ये पहला चरण है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, द्वार खुलने चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की सीट में भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करके इन वर्गों का प्रतिनिधित्व समुचित होना चाहिए।
वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जाति जनगणना पर राजद की राजनीति करने का मुद्दा छिन गया है, इसलिए वे इस तरह की बातें कह रहे हैं और पत्र लिखकर क्रेडिट लेना चाहते हैं।
दिया चूक गए खेत, अब क्या करेंगे तेजस्वी यादव, अब तो खत लिखेंगे। मैंने प्रधानमंत्री को खत लिखा, खत में लिखा अब तो सब कुछ उनकी जो राजनीति थी जातीय जनगणना पे खत्म, अब उनके पाले में जो गेंद थी इस राजनीति की वो छीन ली गई है। साफ हो गया है कि जातिगत जनगणना पे राजनीति करने का हक न राहुल गांधी को, न तेजस्वी यादव को, न अखिलेश यादव को है।
इधर जनता दल यूनाइटेड के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आज पटना में हुई। इसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि बैठक में बोधगया में होने वाली प्रशिक्षण कार्यशाला के बारे में चर्चा की गई। दो दिवसीय कार्यशाला 6 और 7 मई को होगी। इधर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन उवैसी ने आज किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वक्फ कानून का विरोध किया। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गोपालगंज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज समस्तीपुर और मोतिहारी जिले में केंद्र द्वारा देश में जातीय जनगणना कराए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण का जहानाबाद स्थित उनके पैतृक गांव टिम्बलपुर काको में निधन हो गया। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंगेर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा स्थित बहियार में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके से पुलिस ने हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कल होगा भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेब शिखर सम्मेलन में कहा, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए छपरा के रेडियो मयूर और भागलपुर के रेडियो एक्टिव को किया गया पुरस्कृत। और पटना का पीएमसीएच विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1100 से अधिक बेड वाले परिसर का किया उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।